Iran Radio Podcast.
पेरिस शांति समझौते के बाद ईरान के द्वार पूरी तरह से यूरोपीय उत्पादों के लिए खुल गए। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का यह 42वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। अठारह में ईरान में काजारी शासन और ब्रिटेन के बीच पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद अंग्रेज़ अफगानिस्तान को ईरान से अलग करने में सफल हो गए। उससे पहले रूस ने कॉकेशस को ईरान से अलग कर दिया। उसके बाद से ये दोनों दुश्मन देश ईरान के बाकी इलाकों पर कब्ज़ा करने के बजाय ईरानी बाज़ार पर नज़रें गाड़े बैठे थे। पेरिस शांति संधि के बाद ईरान के द्वार पूरी तरह यूरोपीय उत्पादों के लिए खुल गए। इसका असर ये हुआ कि ईरान के हैंडीक्राफ्ट्स, खास तौर पर कपड़ा उद्योग, जिसके उत्पाद मध्य एशिया और रूस को निर्यात किए जाते थे, नष्ट हो गया। सड़कें गरीब बेरोजगार लोगों से भर गईं। बिल्कुल वही घटना जो इससे पहले हिंदुस्तान में हो चुकी थी। ईरानी व्यापारियों को यूरोपीय वस्तुओं को आयात करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन सवाल ये था ये पैसा आएगा कहाँ से। ईरान के बड़े व्यापारियों ने सुना था कि भारत में अंग्रेज़ अफीम बहुत अच्छी कीमत पर ख़रीदते हैं और ईरान की ज़मीन अफीम की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अफीम की ऊंची कीमतों के कारण इसकी खेती पूरे देश में होने लगी। अंग्रेज़ ईरानियों से अफीम खरीदकर उसे चीनियों को बेच दिया करते थे। बहुत ही कम समय में उन इलाकों में भी अफीम की खेती होने लगी जहाँ गेहूँ बोया जाता था। गेहूं की पैदावार कम होने के कारण ईरान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। जिस साल भी बारिश और बर्फबारी कम होती थी, देश में भुखमरी फैलने लगती थी और लोग भूख से मर जाते थे। 1288 हिजरी में बहुत ही भयानक भुखमरी फैली। यहां तक कि कुछ शहरों में लोग इंसानों का गोश्त खाने के लिए मजबूर हो गए। मुर्दा लोगों का या ऐसे लोग जो बहुत कमज़ोर हो गए थे और वो भूखे लोगों से खुद को नहीं बचा सकते थे। जब ईरान में लोग भुखमरी से मर रहे थे तो यज़्द शहर में भूखे लोग स्लॉटर हाउस में जाते थे ताकि वहाँ काटे जाने वाले जानवरों का खून प्याले में लेकर पी सकें और अपनी भूख मिटा सकें। जब शहर के शासक के पास ये खबर पहुँची तो उसने इस खून पर भी टैक्स लगा दिया ताकि सरकार की आय में वृद्धि हो। लोगों पर काजारी शासन के जुल्म इतने ज़्यादा हो गए थे कि जब लोग सड़कों पर यूरोपियों को देखते थे तो उनसे अनुरोध करते थे कि देश पर कब्ज़ा कर लें और लोगों को काजारी शासन से मुक्ति प्रदान करें। शासन के अत्याचारों के कारण देश में दूसरे देशों को अपना प्रभाव बढ़ाने में आसानी होती थी। जिन दिनों देश अकाल की आग में जल रहा था, विदेशों में अनेक ईरानी राजदूतों और प्रतिनिधियों ने, जो विश्व की प्रगति से अवगत थे, दावा किया कि वे देश को बचा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख मिर्ज़ा हुसैन खान सिपह सालार नामक राजनयिक थे, जिन्हें शाह ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों का मानना था कि अराजकता ही ईरान की सभी समस्याओं का मूल कारण है, इसलिए कानून लिखा जाना चाहिए और शासकों को उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। कानून लिखना सिपह सालार के सबसे महत्वपूर्ण वादों में से एक था, लेकिन वो इसे पूरा करने में असमर्थ रहे। कानून के अलावा सिपह सालार की राय में रेलवे का निर्माण देश की कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। इस योजना पर अमल करने के लिए उन्होंने बैरन जूलियस डी रॉयटर नामक एक अंग्रेज़ पूंजीपति से बात की कि वो अपनी पूंजी ईरान में निवेश करे, जिससे उत्तर से दक्षिण तक रेल मार्ग का निर्माण हो सके। इस निवेश के बदले में ईरान रॉयटर को 70 वर्षों तक कीमती पत्थरों को छोड़कर सभी खदानों के दोहन का अधिकार देगा। ये विशेषाधिकार इतना विचित्र था कि एक ब्रिटिश अखबार ने लिखा कि ईरान ने रॉयटर को सिर्फ अपने देश की हवा नहीं बेची है, ब्रिटिश राजनीतिक लॉर्ड करजन ने इस समझौते के बारे में लिखा। इस समझौते में सरकार के सभी संसाधनों को विदेशियों के हाथों में सौंपना शामिल है, जिसकी न तो कभी कल्पना की गई थी और न ही इतिहास में कभी ऐसा देखा गया था। काजार युग के प्रमुख धर्मगुरुओं में से एक मुल्ला अली कनी थे। समाज में आध्यात्मिक शक्ति और प्रभाव के अलावा उनकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी थी। इससे विद्वानों, धर्मगुरुओं और आम जनता के बीच उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। मुल्ला कनी इतने साहसी थे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नासिरुद्दीन शाह उनसे घबराता था। कहा जाता है कि एक दिन नासिरुद्दीन शाह तेहरान से शिकार करने के लिए निकले, लेकिन अचानक शिकार बीच में ही छोड़कर तेहरान लौट आए। किसी ने पूछा कि बिना शिकार के वापस लौटने का क्या कारण है, तो शाह ने जवाब दिया कि मुझे डर था कि मुल्ला अली कनी कहीं शहर के दरवाज़ों को मेरे लिए बंद करने का आदेश ना दे दें। जब मुल्ला अली कनी को रॉयटर अनुबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने नासिरुद्दीन शाह को एक पत्र लिखा और स्पष्ट रूप से अपना विरोध जताया। इस पत्र में उन्होंने शाह को सख्त लहजे में लिखा कि इस्लाम का पवित्र कानून शाह को ये अधिकार नहीं देता कि वो आम जनता की संपत्ति, जमीन, जल और जंगल के बारे में निर्णय लेकर उसे विदेशियों को सौंप दे। मुल्ला कनी ने इस समझौते में भूमिका निभाने वाले सभी लोगों को अयोग्य माना और स्पष्ट रूप से कहा कि जिसने भी ऐसे लोगों को प्रभारी बनाया है उसने धर्म और राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है। शाह ने यूरोप की अपनी यात्रा से वापसी पर तेहरान पहुंचने से पहले ही मिर्ज़ा हुसैन खान सिपह सालार को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त और रॉयटर समझौते को रद्द कर दिया। उसके बाद तेहरान पहुंचकर सीधे मुल्ला अली कनी के पास गए और समझौते को रद्द करने की उन्हें सूचना दी। शाह को इस समझौते को रद्द करने के लिए इंग्लैंड के सामने कोई उचित कारण पेश करना था, लेकिन समझौते में ऐसा अनुच्छेद था जिसके मुताबिक रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत के साथ ही खनन का काम शुरू होना था, लेकिन क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ था इसलिए ईरान के पास समझौते को रद्द करने का अधिकार था। हालांकि अंग्रेज भी ईरान में रेलवे लाइन बिछाने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने रॉयटर का कोई खास समर्थन नहीं किया। नासिरुद्दीन शाह नहीं चाहते थे कि ईरान के लोग दूसरे देशों की प्रगति से अवगत हों ताकि अपने पिछड़ेपन और दयनीय स्थिति पर आपत्ति न जताएं, लेकिन वो अपने इस प्रयास में हमेशा सफल नहीं रहते थे। शाह के शासन के अंतिम दौर में एक युवक सैयद जमालुद्दीन असद आबादी ईरान पहुंचा। उसने युवावस्था में ईरान छोड़ दिया और लंबा समय उस्मानी साम्राज्य, भारत, मिस्र, अल्जीरिया और यूरोप में बिताया। अब ये अनुभवी शख्स ईरान वापस लौटा था ताकि लोगों में जागरूकता उत्पन्न करे और रूस और ब्रिटेन की साजिशों से उन्हें अवगत करे। सैयद जमालुद्दीन को जब भी मौका मिलता था वो जनता को संबोधित करते थे और ब्रिटिश और रूसी उपनिवेशवाद के बारे में बात करते थे। एक दिन शाह के सिपाही सभा में पहुंचे और असद आबादी को कुर्सी से खींच कर ले गए। उन्होंने उन्हें इराक की सीमा पर छोड़ दिया जो उस समय उस्मानी शासन के अधीन था। जमालुद्दीन ने इराक में शिया मुसलमानों के वरिष्ठ धर्मगुरु मिर्ज़ा शिराजी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने शाह द्वारा विदेशी शक्तियों को दिए गए विभिन्न विशेषाधिकारों, दरबारियों के भ्रष्टाचार और छोटे और बड़े शहरों के शासकों के उत्पीड़न की ओर इशारा किया था। यह पत्र उस समय लिखा गया था कि जब एक समझौते के तहत ईरान में तंबाकू की खरीद और बिक्री का एक अधिकार अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। तंबाकू एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद था जिसके ईरान के अंदर और बाहर अनेक ग्राहक थे। इस समझौते के तहत किसानों को अपना तंबाकू सिर्फ अंग्रेज़ों को बेचने के लिए बाध्य किया गया था। देश में दुकानदार भी इसे सिर्फ अंग्रेज़ों से ही खरीद सकते थे। इस स्थिति को देखकर आयतुल्ला मिर्ज़ा शिराजी ने तंबाकू के सेवन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। थोड़े ही समय में यह खबर पूरे देश में फैल गई कि मिर्ज़ा शिराजी ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू के हराम होने का मतलब था कि उसका बोना और उसका बेचना और ख़रीदना सभी हराम है, जिससे अंग्रेज़ों का एक अधिकार बेकार होकर रह गया। मिर्ज़ा शिराजी के फतवे और जनता के विरोध के कारण शाह को ये अनुबंध भी समाप्त करना पड़ा। तंबाकू एक अधिकार के समाप्त होने से जितना ब्रिटिशों को गुस्सा आया उतना ही रूसियों को खुशी हुई। इंग्लैंड को लगा कि ईरान में उसका रूसी प्रतिद्वंद्वी उसे आगे निकल गया है और उसे इस स्थिति का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। 1896 में सैयद जमालुद्दीन के एक करीबी दोस्त ने नासिरुद्दीन शाह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद शाह का बेटा मुजफ्फर गद्दी पर बैठा। अपने पिता की तरह मुजफ्फरुद्दीन शाह को भी यूरोप की यात्रा करने में बड़ी रुचि थी और समय समय पर बीमारी के इलाज के बहाने वो फ्रांस की यात्रा करता था। दरअसल ये यात्राएं अय्याशी के लिए होती थीं, जिन पर बहुत खर्च आता था। जिस देश के गरीब लोग अपने करों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे होते थे, उस देश की सरकार के पास इन खर्चों को पूरा करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, और वो था विदेशों से उधार लेना। १३१८ हिजरी में शाह की पहली यूरोप यात्रा के लिए रूस से ऋण प्राप्त हुआ था, जिसके लिए दक्षिण के अलावा सभी ईरानी सीमा शुल्कों के आय को बैंक ऑफ रशिया के अधीन रखा गया था। इसके तहत रूसी हर महीने सीमा शुल्क राजस्व से अपने ऋण की किस्त काटकर शेष राशि 6 महीने बाद ईरानी सरकार को लौटाते थे। अंग्रेज इस स्थिति को ईर्ष्या से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि ईरानी सरकार भी उनसे ऋण ले। इस कर्ज के लिए दक्षिणी सीमा शुल्क टेलीग्राफ कार्यालयों, डाकघरों और मत्स्य पालन से प्राप्त राजस्व को गारंटी के रूप में रखा गया था। 2 साल बाद जब मुजफ्फरुद्दीन शाह फिर से यूरोप की यात्रा करना चाहते थे, तो रूस से दूसरा ऋण लिया गया। ये ऋण ईरान को पहले ऋण के समान ही शर्तों और गारंटी के साथ दिया गया था, लेकिन इस बार रूसियों की एक नई मांग भी थी, ईरान को निर्यात किए जाने वाले 2 मुख्य रूसी सामानों पर सीमा शुल्क में कमी करना। अंग्रेज रूसियों के नए सीमा शुल्क को ईर्ष्या से देख रहे थे, हालांकि 1 वर्ष पहले ही वो ईरान में उनसे एक मीठी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे थे, तेल निकालने का एकाधिकार। इस रियायत के आधार पर उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण ईरान में तेल निकालने का अधिकार एक ब्रिटिश कंपनी को 60 वर्षों के लिए दे दिया गया था। इस समझौते को कराने के लिए मुजफ्फरुद्दीन शाह के प्रधानमंत्री ने 10,000 ब्रिटिश पाउंड की रिश्वत प्राप्त की थी। विदेशियों को दिए गए सभी विशेषाधिकारों से जनता के विभिन्न वर्गों में चिंता उत्पन्न हो गई। इस स्थिति के खिलाफ सभी समूहों के लोगों की चिंता और विरोध और उनकी एकता को एक नाम से जाना गया, क्रांति। धार्मिक विद्वानों के मार्गदर्शन में लोगों ने धरना दिया और दरबार के सामने अपनी मांगें रखी। जनता और विद्वानों का विरोध अंततः रंग लाया और मुजफ्फरुद्दीन शाह ने 1906 में एक सीमित और सशर्त सरकार की स्थापना के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। शासन की इस पद्धति के अनुसार लोगों के प्रतिनिधियों की एक संसद का गठन किया जाना था, जो कानून बनाएगी। कानून के अनुसार देश पर शासन किया जाएगा, न कि शाह की व्यक्तिगत सनक और इच्छाओं के आधार पर। संवैधानिक सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय बाद ही मुजफ्फरुद्दीन शाह की मौत हो गई और उनके पुत्र मोहम्मद अली मिर्जा ने गद्दी संभाली। उस समय संसद ने जनप्रतिनिधि उत्साहपूर्वक और गंभीरता से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और करों को न्यायपूर्ण बनाने के लिए कानून लिख रहे थे। उन्होंने एक ईरानी बैंक स्थापित करने की योजना बनाई और जब नए शाह ने विदेशियों से नया ऋण प्राप्त करने के लिए रूसी और ब्रिटिश दूतावासों के साथ बातचीत शुरू की, तो संसद के सदस्यों ने उनकी कड़ी आलोचना की और शाह को देश पर नया ऋण लादने की अनुमति नहीं दी। रूसी प्रभाव वाले शाह की शक्ति को सीमित करने का मतलब रूस की शक्ति को सीमित करना था, इसलिए शुरू में अंग्रेजों ने संवैधानिक क्रांति का समर्थन करने का फैसला किया, लेकिन रूस को ईरान में इस नई स्थिति से निपटना था ताकि ईरानी दरबार पर उसका नियंत्रण बना रहे। उसी दौरान यूरोप में एक नई शक्ति उभर रही थी, जर्मनी। ये शक्तिशाली देश इंग्लैंड और रूस का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था। रूस और ब्रिटेन को जल्द ही अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर इस शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना पड़ा। अंततः 1907 में दोनों देशों ने अतीत के मतभेदों को भुलाकर जर्मनी का मुकाबला करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के आधार पर ईरान को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ईरान का दक्षिणी भाग ब्रिटिशों के प्रभाव का क्षेत्र था और उत्तरी भाग रूसियों के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। देश का वो हिस्सा जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित था, उसे तटस्थ क्षेत्र माना गया। इंग्लैंड और रूस ने ईरानी दरबार या संसद की जानकारी के बिना ही देश को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। उसी दौरान एक अंग्रेजी अखबार ने इस समझौते के बारे में एक कार्टून प्रकाशित किया था। इस चित्र में रूस की तुलना भालू से, इंग्लैंड की तुलना शेर से और ईरान की तुलना बिल्ली से की गई थी। शेर ने भालू से कहा, तुम बिल्ली के सिर के साथ खेलो और मैं उसकी पूंछ के साथ खेलूंगा और हम दोनों उसकी छोटी पीठ को सहला सकते हैं। बिल्ली ने कहा, मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बारे में मुझसे कोई सलाह ली गई थी। दोस्तों, ये पॉडकास्ट ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप अन्य विषयों पर भी हमारे दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi को विजिट कर सकते हैं।